الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورة المؤمنون کی جو تفسیر ہم رمضان المبارک میں پڑھ رہے تھے، اسی کو ہم نے پچھلی کلاس میں جاری رکھا تھا کیونکہ وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی رمضان المبارک کے مہینے میں. تو اس میں اب ہم جو ہیں وہ پیج نمبر 329 یعنی 3.9 کے اوپر ہیں، معارف و مسائل پڑھ رہے ہیں، آیات نمبر 93 سے لے کر کے 100 تک کی. ٹھیک ہے، تو ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر پڑھ لیا تھا، معارف و مسائل شروع کر لیے تھے. اب ہم معارف و مسائل میں اگلی جو حضرت نے آیت کی تشریح لکھی ہے وہ کیا ہے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، یعنی بے شک ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. یعنی کافروں سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کہ تم نہیں مانو گے تو تم عذاب کا شکار ہوگے دنیا میں بھی، ٹھیک ہے نا، تو یعنی دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہو، تو ہم دکھا سکتے ہیں بھائی آپ کے سامنے بھی ان کو عذاب دے سکتے ہیں. تو حضرت اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی ہم کو اس پر پوری قدرت ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہی آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھلا دیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ اس امت پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عذاب عام نہ آنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے، عذاب عام جیسے ہوئی تھی کہ پوری امت کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، ایسا عذاب عام جو ہے وہ نہیں آئے گا اس امت کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا مزید یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بھی نہیں آئے گا، اس کا بھی وعدہ ہو چکا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو ان لوگوں کو اس حالت میں ہلاک کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں، یعنی آپ ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دینے والے ہیں. یعنی اتنا اکرام جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، لیکن خاص خاص لوگوں پر عام یعنی خاص حالات میں، خاص خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب دنیا ہی میں آ جانا اس کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو وعدہ ہے نا، اس وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپیشل کیسز میں عذاب نہیں آ سکتا، نہیں، اسپیشل کیس میں تو عذاب آ سکتا ہے، ہاں عمومی عذاب نہیں آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے انڈیویجولی جو ہے وہ مشرکین مکہ میں کئی لوگوں کے اوپر الگ الگ عذاب آئے. بچوں کی جو سیرت کلاس چل رہی ہے تو اس کے اندر ہم نے جب مکی زندگی کی تفصیلات پڑھ رہے تھے تو ایسے لوگوں کا نام لے لے کر کے ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے. کسی کے پیر کے اندر ایک پھوڑا نکل آیا اور اس کے اندر جو ہے وہ پس پڑ گئی اور وہ جو ہے وہ پھول گیا، اتنا شدید اس کے اندر اس کو زخم ہو گیا، تکلیف ہو گئی اور اسی کے اندر وہ مر گیا. کسی کو کسی طریقے سے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. اس طرح کے کوئی 7-8 لوگ تھے کہ جن کو کہ انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے نا باقاعدہ دنیا والوں کے سامنے ایسے عذاب دے کر کے ہلاک کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ اسپیشل کیسز جو ہیں یہ پھر بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اس آیت میں جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھلا دیں، وہ اہل مکہ پر قحط اور بھوک کا عذاب، پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر پڑ چکا تھا. ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر جو عذاب آیا نا وہ پھر ان دو شکلوں میں آیا تھا، ایک تو قحط کا عذاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما کے جا چکے تھے یہاں سے، لیکن پیچھے ان کے اوپر آیا تھا، اور پھر جب بدر کے میدان میں یہ لوگ آئے تو پھر وہاں پر 70 سے زیادہ قریش کے سرداروں کو تہ تیغ کیا. مسلمانوں نے फरिश्तों की मदद से, फरिश्तों ने आकर के उनका सर कलम किया, मुसलमानों ने तो खाली हाथ चलाया था, है ना, तलवार जो है वो फरिश्तों के आकर के उनको काट रही थी। तो अब ये जो अल्लाह का अजाब इस तरीके का आता है ना, तो इस तरीके का जो अजाब आता है ये फरिश्तों के जरिए से आता है ना, कि जैसे कौमी लूत के ऊपर अजाब आया, अब वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पूरी की पूरी कौम को जो है वो जमीन से उखेड़ा और ऊपर ले जा करके पटक दिया। या किसी दूसरी कौम, तो कौम शुएब अलैहिस्सलाम, वहां पर जो है वो फरिश्ते ने आकर के एक चीख मारी और उस चीख से जो है वो सारे के सारे मर गए, और भी इस तरीके की। तो ये फरिश्तों के जरिए से हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो अजाब होता है ना, जो कि काफिरों को दुनिया के अंदर जो अजाब की सूरत मिलती है वो फरिश्तों के जरिए से होती है। तो बदर के अंदर भी जो काफिरों को कत्ल किया गया है वो फरिश्तों ने आके कत्ल किया है, ठीक है ना। मुसलमानों के पास तो अक्सर तलवारें भी नहीं थी, लड़ रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे, आगे से कुछ कर रहे थे, राइट, लेकिन गर्दनें किसने उड़ाई हैं? फरिश्तों ने उड़ाई हैं, ठीक है ना। तो वही फिर जो पिछली कौमों के ऊपर अजाब की जो शक्ल थी फरिश्तों के थ्रू, वो शक्ल जो है वो बदर के मैदान में भी आ गई, ठीक है। तो यहां पर उन अजाबों की बात हो रही है, ठीक है भाई। अल्लाह ताला कोई ऐलान फरमाते हैं, उमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम व अंत फीहिम, कि हम इनको अजाब नहीं देने वाले हैं इस सूरत में कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है ना। अब आप मौजूद हैं, दुनिया के अंदर मौजूद हैं, फिर भी इनके ऊपर अजाब आ गया, तहत की शक्ल में आ गया, और बदर के अंदर फरिश्तों की तलवारों की शक्ल में आ गया, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला जो है ना, ये कोई हमारी तरह के तो नहीं है कि जी एक तरफ से जो है वो एक बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो उसकी पाबंदी करने के ऊपर, अल्लाह ताला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तो उसूल बनाने वाले हैं, राइट। अल्लाह ताला कोई उसूल के ताबे नहीं है, अल्लाह ताला तो कानून उसूल है ना, अल्लाह ताला तो कानून बनाने वाले हैं, ठीक है ना। वो तो जो मखलूक होती है वो कानून के ताबे होती है, वो उसूल के ताबे होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक लतीफा याद आता है, वो कोई अंग्रेजी के स्कॉलर है, उनका किसी ने साजिश को भेजा था, बड़े मजे मजे के बयान करते हैं। तो उन्होंने एक दफा एक छोटा सा लतीफा सुनाया था, ठीक है। तो वो लतीफा याद आता है, लेकिन बात वैसे लतीफे वाली है नहीं। तो कहने लगे कि जी इन अ फैमिली देर आर इन लॉस, ठीक है, शायद आपको याद भी आ गया होगा, देर आर इन लॉस, देर इज अ फादर इन लॉ, देर इज अ ब्रदर इन लॉ, देर इज अ सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना, बट देर इज नो वाइफ इन लॉ, है ना। कभी वाइफ इन लॉ सुना? फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब कुछ मिल गया, ठीक है ना, लेकिन वाइफ इन लॉ नहीं होता। वाई? बिकॉज शी इज दी लॉ, है ना। कहने लगे शी इज दी लॉ, भाई वही तो कानून है, वही तो कानून साज है, ठीक है ना। यानी वाइफ का इतना वो, जिन घरानों में ऐसा होता है तो वहां पर फिर ऐसा भी होता है, यहाँ पे खातून गालिब होती हैं तो वहां पर वही कानून बनाती हैं, तो फिर वो इन लॉ नहीं होती, शी इज द लॉ, ठीक है ना। तो ये तो लतीफे की बात हो गई, लेकिन अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला तो भाई लॉ मेकर है ना, ठीक है, हमारा काम तो उस लॉ को फॉलो करना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फिर इन लॉ के ऊपर शक्ल में लाया, ठीक है। अच्छा, उससे पीछे जो जो एक एक हमारी जो एक इशारों वाली बात होती है, इशारे लेते हैं, तो पीछे वो बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं कि आप मुझसे ये दुआएं मांगिए, कहिए रब्बी, ए मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी मा यूअदून, राइट, रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम को सिखा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ना इंसान को बनाया ऐसे है कि इंसान को जो है वो गाइडेंस की, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और इसका जो मॉडल अल्लाह ताला ने हमें बना करके दिखाया वो अपने नबी अलैहिस्सलाम की शक्ल में ये मॉडल दिखाया कि देखो ये जो मॉडल है ना, अब हम इस मॉडल को क्या क्या किस नजर से देखते हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, है ना, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इमामा पहनते थे, और नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना वो शलवार जो है वो टखनों से ऊंची होती थी। तो हमारे नजदीक नबी अलैहिस्सलाम के मॉडल में ये बस चीज है, या ये मॉडल है बस नबी अलैहिस्सलाम का, ठीक है ना, और इस मॉडल से आगे हम बढ़ना नहीं चाहते। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई कम अहम चीज है, कोई एक सुन्नत भी कम अहमियत नहीं रखती, सारी सुन्नतें जो हैं वो یعنی اہم ترین ہیں, چاہے وہ ایک بظاہر ایک چھوٹا سا چہرے پر بال اگانے والی سنت ہو, رائٹ, یا ایک جو ہے وہ لباس کو جو ہے ایک سرٹن طریقے سے پہننے والی سنت ہو, ہر سنت اہم ترین ہے. لیکن بھائی صرف یہ سنتیں کوئی تھوڑی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماڈل جو ہے اس ماڈل کو تو آپ پھر پورا دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی, ہے نا؟ کیا وہ ماڈل ہم فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, یا ہم سیلف ٹرینڈ ہیں, رائٹ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سیلف ٹرینڈ نہیں تھے, ہم سیلف ٹرینڈ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹرینر تھے اپنے اسٹوڈنٹس کے, اور ہم جو ہیں وہ کوئی ٹرینر نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا؟ صحابہ نے تو بھائی وہ بھی تو ایک ماڈل تھا نا. دس یعنی ماڈل جو ہوتا ہے یہ کوئی ون ڈائمینشنل چیز کو تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو ایک ایٹ لیسٹ تھری ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے نا. اس کے اندر لینتھ ہوتی ہے, بریتھ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے, بلکہ اس کے اندر اور بھی آپ ڈائمینشنز ایڈ کر سکتے ہیں. ویسے ڈائمینشنز پہ جن لوگوں نے ریسرچ کری ہے تو وہ پتہ نہیں 10 ڈائمینشنز تک گئے ہیں, ہے نا؟ دنیا کے اندر جو ہے وہ فورتھ ڈائمینشن کا یہ مطلب ہوتا ہے, ففتھ ڈائمینشن کا یہ مطلب ہوتا ہے, سکس سیونتھ ایٹ نائن ٹینتھ, وہ ڈائمینشنز کی تو پوری کی پوری ریسرچ بھری پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو ماڈل میں تو بھائی ساری کی ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا. تو اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرسنالٹی کے اندر جو ماڈلز ہیں اس میں یہ سب آ جاتا ہے. ہاؤ واز ہی ٹرینڈ, ہاؤ ڈڈ ہی ٹرین ادرز, ہاؤ ڈڈ ہی لیو, ہاؤ ڈڈ ہی ڈریس, ہاؤ ڈڈ ہی اسپیک, ہاؤ ڈڈ ہی کنڈکٹ ہمسیلف, ایوری تھنگ کمز ان دی ماڈل نا. تو ہم جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں پھر یہ ساری چیزیں, تو اس سے ہم ان پچھلی آیات سے کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ سے کیسے اپنا کام نکلوانا ہے, اللہ سے کیسے مانگنا ہے, اللہ سے کیسے منوانا ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھایا کہ مجھ سے ایسے مانگو, تو ہمیں بھی سیکھنا ہے, سیکھے بغیر ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں امپورٹنٹ ڈیٹیلز کو. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اخلاقیات سکھلا رہے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کرو. اس کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی آپ برائی کو بھلائی کے ذریعے, ظلم کو انصاف کے ذریعے, اور بے رحمی کو رحم کے ذریعے دفع فرما دیں. دفع فرما دیں کا مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہ اس کو یعنی دفع ہو جائیں یہاں سے, نہیں, مطلب یہ کہ اس کو اس طریقے سے آپ ریسیپروکیٹ کریں, ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ اس کا رسپانس کریں, اس طریقے سے آپ اس کا جواب دیں. یہ مکارم اخلاق کی تعلیم ہے. مکارم اخلاق, اکرم, بہت ہی عزت والے, اکرم والے, اکرم جو اخلاق ہے نا, ان کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے, جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لیے ہمیشہ جاری ہے. یعنی مسلمانوں کے آپس میں تو یہی کرنا ہے, ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, ٹھیک ہے. کوئی آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ برا کام کر دے, اب نہیں چھوڑوں گا, گریبان پکڑ لوں گا جا کر کے, اور اس کے گھر کے اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, نہیں بھائی, ایمان والے ہیں, ایمان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اچھا اگر کوئی کافر بھی ہے پڑوسی میں, پڑوس میں ہے, شہر میں رہتا ہے, کوئی کافر بھی ہے, لیکن ان کافروں کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, ایک جو ہے وہ یعنی اس شہر کی جو ہے کچھ قوانین کے تحت یہ کافر بھی اس کے تحت ہیں, مسلمان بھی اس کے تحت ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے, اچھا کافر ہے چلو جی, اب تو اس نے میرے ساتھ برا کیا نا, اب تو بجا دوں گا میں جا کر کے اس کا گھر بجا دوں گا, اس کا گھر گھر توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, کر دوں گا, ٹھیک ہے, نہیں, آپ ایک قانون کے تحت ہیں, آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لیے یہ اصول ہمیشہ جاری ہے, اور جو کسی یعنی قانون کے تحت ایون غیر مسلم بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک جاری ہے. البتہ کفار و مشرکین سے ان کے مظالم کے مقابلے میں عفو درگزر ہی کرتے رہنا, ان پر ہاتھ نہ اٹھانا, یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا, ٹھیک ہے. کفار و مشرکین کے ساتھ یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جی وہ تمہیں تھپڑ مارے تو تم جو ہے وہ آگے سے دوسرا گال پیش کر دو, نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ جو حکم منسوخ ہوا ہے یہ کن کفار کے ساتھ منسوخ ہوا ہے, یعنی کن کفار کے ساتھ جو ہے وہ آپ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ والا اصول نہیں رکھیں گے، یہ صرف ان کفار کے ساتھ ہوگا کہ جن کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، سلطان نے مفتی حضرات کی گائیڈنس میں باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے جن کافروں کے خلاف، اب وہاں پر یہ والا اصول نہیں چلے گا۔ یہ نہیں کہ جی آپ پاکستان میں رہتے ہیں برابر میں کوئی عیسائی رہتا ہے اچھا یہ تو کافر ہے چلو جی پکڑ کے مارو اس کو، یا انڈیا میں رہتے ہیں وہاں پہ ساری کافر ہیں چاروں طرف تو پکڑ پکڑ کے مارتے رہو ان کو کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں، ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی نہیں آیا، ان کے خلاف ایسا کوئی سلطان کا یا ایون دارالفتا کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، علماء کا کنسنسس کوئی ایسے بارے میں نہیں آیا، تو ان کے ساتھ بھی آپ کو ادفع باللتی ہی احسن و سیئہ والا معاملہ کرنا پڑے گا۔ جہاد ابھی شروع نہیں ہوا، ایسے نہیں اٹھا کر کے جو ہے وہ پکڑ کے مار دیا، ادھر مار دیا ادھر مار دیا، سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ اب خوفزدہ ہو جائیں گے اب مسلمانوں سے، جی خوفزدہ کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے ہیں، خوفزدہ کیا ہوں گے، اوپر اٹھا کر نہیں الٹا اور آپ کو پٹائی ہوگی، کیونکہ آپ نے تو اللہ کا حکم تو توڑا ہے نا بھائی، اللہ کے حکم کو مانو گے تو ان کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خوف ڈالنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی تھوڑی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے کسی کے دل میں خوف ڈالنا ہوتا ہے، ہم نے تو اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر اس کے انعام کے طور پر دوسروں کے دلوں میں ہمارا خوف ڈالنا ہوتا ہے یا ہمارا روب ڈالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ویجیلینٹزم، یہ جو ویجیلینٹزم کہتے ہیں اس کو کہ جی حرکتیں کرنی شروع کر دی اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی خوف شوف نہیں آتا ہے، الٹا زیادہ پٹائی ہوتی ہے اس کے بعد پھر، ٹھیک ہے، بہرحال تو یہاں پر کیا ہے کہ جی کفار و مشرکین سے ان کے مظالم کے بدلے میں عفو درگزر ہی کرتے رہنا، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا ہے، مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حسن خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے، عورتیں جو ہیں جو کہ باقاعدہ فائٹنگ فورس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عورتیں یہ ایک ٹریڈیشن تھا، ایک یعنی لڑائی کا ایک روایت تھی کہ جب فوجیں آتی تھیں تو ان کے جو لیڈرز ہوتے تھے نا، سردار وغیرہ جو ہوتے تھے، وہ فیملی کو لے کر کے آتے تھے، ہر سپاہی کی فیملی ساتھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، بلکہ جو امیر ہوتے تھے، امیر سے مراد مطلب لیڈرز، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے وہ فیملیز بھی آ رہی ہوتی تھی میدان جنگ کے اندر، ٹھیک، مسلمانوں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی تھیں، کافروں کی طرف سے بھی آ رہی ہوتی تھیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ کمبیٹنٹس نہیں ہوتے تھے، وہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ پیچھے سے بک اپ کرنے کے لیے آ رہی ہیں یا مرہم پٹی کرنے کے لیے آ رہی ہیں یا جو ہے وہ بس شوہر صاحب کو ایک فیملی ممبر چاہیے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، جو بھی اس کی مصلحت ہیں، تو اس وجہ سے وہ عورتیں آ رہی ہوتی تھیں، تو عورتوں کو ان عورتوں کو قتل کرنے کا کی اجازت نہیں ہے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، حالانکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ کیا مشرق نہیں ہوتے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہوتے، ہر مشرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ لڑائی کے اندر ایکٹیولی انوالو نہیں ہے اور وہ اپنے جو بھی ان کے ریچولز ہیں ان کے اندر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے بھجن گا رہے ہوں یا کوئی پوجا پاٹھ کر رہے ہوں کہ جی اس پوجا پاٹھ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے لشکر کو جو ہے وہ تقویت ملے گی، مسلمان کے نزدیک کو تھوڑی اس پوجا پاٹھ کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ پوجا پاٹھ کرنے سے اپنے لشکر کو تقویت پہنچا دیں گے، ہمارے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ان کے پوجا پاٹھ کی کوئی ایسی حیثیت ہی نہیں ہے فرشتوں کے سامنے، ٹھیک ہے نا بھائی، مسلمان جو جہاد میں جاتا ہے نا تو یہ تو فرشتوں کے بغیر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا مسلمان ہے جو کہ کافر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور تلوار لے کے گیا ہے خالی، رائٹ، تلوار گھوڑے نیزے یا بندوق لے کے چلا گیا ہے نا، یہ کون سا جہاد ہے بھائی، یہ جہاد جو ہے نا یہ جہاد ہی نہیں ہوتا، جہاد تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر کے فرشتے ساتھ جا رہے ہوں مسلمانوں کے، ایسا کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے جس کے اندر فرشتے ساتھ نہ ہوں، ایسا جہاد ہو ہی نہیں سکتا، فرشتے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتوں کے بغیر مسلمان جہاد نہیں کرتا، کبھی سنا ہے پہلے ہی بات، سنا تو خیر آپ نے ہوگا لیکن شاید اس نظر سے نہ دیکھا، ٹھیک ہے نا, جب مسلمان جہاد کرتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہوتے بھی کون سے والے ہیں؟ مشائخ نے تو بتایا ہے کہ وہی بدر والے ہی ہوتے ہیں, وہ بدر والے جو ہیں وہ دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں, جہاں جہاں جہاد ہوگا وہاں پہ وہی والے فرشتے آ کر کے مسلمانوں کی مدد کریں گے, ٹھیک ہے. اب اس کا ایک سمجھ لیں کنکلوژن, اس بات کے, اس جملے کے بولنے کا کا فائدہ کیا ہے ہمیں؟ کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر مسلمان آرمی وہ حرکتیں کر رہی ہو جن حرکتوں سے فرشتے بھاگ جاتے ہوں, ہے نا بھائی, ہے تو مسلمان آرمی لیکن حرکتیں ایسی کر رہی ہے جن حرکتوں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں, تو کیا مطلب ہوا کہ آپ بتا دیں کیا مطلب ہوا اس کا؟ مسلمان فوج ہے لیکن فرشتوں کو بھگا دیا اس نے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر, جی اٹ از ناٹ اے جہاد, ٹھیک ہے نا, اٹ از ناٹ اے جہاد, ٹھیک ہے نا, وہ کچھ اور ہوگا, جہاد نہیں ہو سکتا وہ جہاں پر آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے فرشتوں کو بھگا دیا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میوزک ہے نا, ابھی مسلمان آرمی جا رہی ہے اور ساتھ ٹرمپٹس بج رہے ہیں, جیسا کہ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر ٹرمپٹس بج رہے ہیں, جی مسلمان آرمی ہے جہاد کرنے جا رہی ہے, ٹرمپٹس بجا کے جا رہی ہے نا بھائی, فرشتے تو وہاں پہ نہیں ہیں, تو کیا پھر آپ کر رہے ہیں وہاں پر؟ وہاں پہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں, جہاد نہیں کر رہے آپ, ٹھیک ہے نا. یا آپ نے بے پردہ عورتوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے, مسلمان عورتیں بے پردہ آرمی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, بے پردگی کے ساتھ اللہ کی رحمت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اللہ کی لعنت آتی ہے بے پردگی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, وہ اتنی ساری عورتیں بے پردہ, وہ تو اللہ کی لعنت آ رہی ہے ادھر, تو فرشتے کدھر گئے پھر؟ فرشتے کوئی نہیں گئے, فرشتے چلے گئے وہاں سے. تو اب یہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل وار تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کو جہاد نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جب فرشتے ہیں تو پھر ہندو بیٹھ کر کے بھجنگ پڑھ رہا ہے یا منتر پڑھ رہا ہے یا عیسائی جو ہے وہ کوئی بھی ڈھونگ رچا رہا ہے یا یہودی کچھ کر رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ادھر تو فرشتے ہیں آپ کے ساتھ, فرشتوں کے ہوتے ہوئے تو ان منتروں کا کوئی اثر ہی نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا. بیٹھ کر کے بے شک جو ہے وہ جوگی بیٹھ کر کے وہ توجہ ڈالتا رہے, رائٹ, وہ اپنا کیا کہتے ہیں توجہ مرکوز کر کے جو ہے نا مسلمان آرمی کو جو ہے وہ ہرانے کی کوشش کرتا رہے. بھائی ادھر تو فرشتے ہیں, فرشتوں نے اس کی توجہات کو بالکل کینسل آؤٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, کافروں کے مشرک ہیں اور بت پرست ہیں جو بھی ہیں, ان کو نہیں مارنا, ٹھیک ہے نا, وہ کریں جو کرنا ہے, ان کو مرضی ہے, ان کے جو جیسا چاہیں کریں, وہ کمبیٹنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اور جس کو بھی قتل کریں, جی صنف آن ہو بے پردہ عورتیں, ٹھیک ہے جہاد نہیں ہوتا ہے سب کچھ, بہرحال تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور جس کو بھی قتل کریں گے تو اس کا مسلح نہ بنا دیں کہ ناک کان وغیرہ کاٹ لیں, ٹھیک ہے نا, یہ ناک کان وغیرہ کاٹنا جو ہے اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں, یعنی لاش کو آپ نے بگاڑ, ٹھیک ہے نا, یا زندہ انسان کو ہی آپ نے اس طریقے سے مسلح کر کے جو ہے وہ قتل کیا, جیسے کہ نان مسلمس کے یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یورپ کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسی دہشت ناک قسم کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ یعنی آپ تصور نہیں کر, آپ یعنی لٹرلی اگر آپ یورپ کے اندر جیسے اذیت دے دے کر کے لوگوں کو مارا جاتا تھا نا, یہ جو جس کو میڈیول ٹائمز کہتے ہیں یا ڈارک ایجز کہتے ہیں ان کے, آپ کو شاید آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں, آپ کو نیند نہ آئے پھر اس کے بعد. تھوڑی سی تفصیل پڑھ لینا اگر آپ انہی کی کتابوں میں سے, یعنی کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا میں اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ سب کچھ نہیں, انہی کی کتابوں کے اندر سے آپ یہ تفصیلیں پڑھ لینا, نیند حرام ہو جائے گی اگر آپ تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں, آپ سو نہیں سکیں گے پھر اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ وغیرہ کرنا جو ہے یہ بھی منع ہے. وغیر ذالک من احکام مکارم الاخلاق, ٹھیک ہے. اسی لیے بعد کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان اور اس کے وساوس سے پناہ مانگنے کی دعا تلقین کی گئی کہ عین میدان قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف اور مکارم اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غصہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے, ٹھیک ہے, اور وہ دعا یہ ہے. तो ख्वातीन की तरफ किसी ने सवाल पूछा था कि किसी से ताल्लुकात खराब हो जाए तो इस आयत को पढ़ते रहने से ताल्लुक बहाल हो जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? अब देखें, ये आप पढ़ लें आगे का पैराग्राफ, इसके अंदर अगर कोई ऐसी बात मिलती है तो फिर होगी, तो मुझे नहीं पता वैसे ज्यादा। ठीक है, वजीफों के बारे में आपको शायद इसका पता ही है हाल, तो चलें आगे पढ़ते हैं। इसमें है तो वैसे बड़ी जबरदस्त दुआ। तो फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वकुर रब्बी आऊदु बिका मिन हमजात शयातीन व आऊदु बिका रब्बी अय यहदुरून। ठीक है, कि आप कहिए कि ऐ मेरे रब, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ शयातीन के हमजात से, और मैं आपकी पनाह मांगता हूँ ऐ मेरे रब कि वो मेरे सामने हाजिर हो जाए, शयातीन मेरे सामने हाजिर हो जाए। ठीक है, तो वैसे तो तर्जुमे में भी बहुत इसके ऊपर बात कर चुके हैं, रमजान मुबारक की जो आखिरी क्लास थी उसके ऊपर भी बहुत इसके ऊपर बात हुई थी। अब हम जहाँ पे बस टेक्स्ट में से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे उसका बात कर लेंगे। तो फरमाते हैं कि लफ्ज हमजा, हमजा के मानी धक्का देने और दबाने के आते हैं, और पीछे की तरफ से आवाज देने के मानी में भी इस्तेमाल होता है, यानी उस मानी में भी इस्तेमाल होता है, और बाकायदा पुश करना यानी दबाना इस मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो अब वो ये काम कैसे करता है भाई शैतान? ये दुआ अपने मफहूम आम के एतबार से एक जामे दुआ शैतान के शर और मकर से बचने के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इस दुआ की तलकीन फरमाई है ताकि ऐसे गुस्सा और गैज़ो गज़ब की हालत में, जबकि इंसान को अपने नफ्स पर काबू नहीं रहता और उसमें हमज़ो शयातीन का दखल होता है, इससे महफूज रहे। यानी जब गुस्सा गैज़ो गज़ब आए तो फिर ये दुआ भी नबी रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीकों में से उसके शर से महफूज रहने के लिए। इसके अलावा शयातीन और जिन्नात के दूसरे आसार और हमलों से बचने के लिए भी ये दुआ मुजर्रब है, क्या कहते हैं उसको, पोटेंट पोटेंट मेडिसिन, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि इसमें बड़ी शिफा होती है। ठीक है, तो ये दुआ जो है उस तरह की एक मुजर्रब दुआ है, इससे फायदा होता ही है। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को शब में नींद ना आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये कलिमात दुआ तलकीन फरमाए कि ये पढ़कर लेटा करें। उन्होंने पढ़ा तो ये शिकायत जाती रही, वो दुआ ये है, आऊदु बिकलिमातिल्लाहित्तामाते मिन ग़ज़बिल्लाहि व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश्शयातीनी व अन यहज़ुरून। यानी आयत नहीं है बल्कि इस आयत के अंदर जो मजमून है ना कि शयातीन के हमजात से और उनके हाजिर होने से महफूज फरमाए, तो ये दुआ खालिद बिन वलीद रहता तो यही लगते हैं, तो दूसरे खालिद रहता लगते हैं। तो ये होता है, काफी लोगों को इस तरह का इशू होता है। कुछ लोगों को तो लेटने से पहले ही नींद आ जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो कोई खास अमल करने से, जैसे किताब उठाई उधर ही नींद आ गई। ठीक है ना, तो मुख्तलिफ तबीयतें होती हैं, मुख्तलिफ इस तरह की तो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हिसाब से। तो एक तबका जो है ना वो ये भी होता है कि जो के लेटने के बाद उनको नींद नहीं आती। अब ये नहीं कि थके हुए नहीं है, कुछ तो ऐसा है ना कि थके हुए नहीं है, नींद पूरी हुई हुई है तो अब कहाँ से नींद आएगी। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कि थके हुए भी होते हैं और उनकी नींद भी जो है ना वो काफी यानी डिस्टर्ब यानी नहीं हुई हुई होती, फिर भी उनको नींद नहीं आती और नींद की मिन्नतें करते हैं, मुहावरतन कहते हैं, नींद की मिन्नतें करते हैं फिर भी नींद नहीं आती, फिर वो नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। वो एक अलग टॉपिक है कि जी वो इतने अमीर हैं और फिर भी परेशानियां इतनी हैं कि इस वजह से वो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती, नहीं आती। लेकिन हमने गरीबों को भी बहुत देखा है, मिडिल क्लास के लोग, जिनका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बस नींद नहीं आ रही। ठीक है, तो जो रात सोने से पहले की दुआएं हैं तो उनमें से फिर एक दुआ इसको भी फिर शामिल करके देख लें, इंशाल्लाह फायदा होगा, क्यों नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बताई थी ये दुआ। उसके अलावा हमने अपने मशायख से एक और इससे भी ज्यादा आसान चीज सुनी कि कलमा तैयबा का वर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, वरना ज्यादातर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर नींद ना आने वाला प्रॉब्लम है तो इससे भी जो है नींद आ जाती है, ये हमने अपने मशायख से सुना। ठीक है, अपने आदत से ही पिछले दिनों ही सुना। ये हमदात शैतान के फिर ये तफसील पीछे, चूंकि काफी ज्यादा इसके ऊपर बात हो चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि इसी में क्या था, अय्याहुरून, कि वो मेरे सामने हाजिर हो। तो सही मुस्लिम में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे हर काम में, हर हाल में तुम्हारे पास आता है और हर काम में गुनाहों और गलत कामों का वसवसा दिल में डालता रहता है। इसी से पनाह मांगने के लिए ये दुआ तलकीन फरमाई गई है। ठीक है, तो ये जो इस हदीस मुबारका के अंदर जिस शैतान का जिक्र हो रहा है, तो ये शैतान जो कि हर काम के अंदर आकर के वसवसे डालने की कोशिश करता है, ठीक है, और यानी मौजूद होता है, वसवसे डालता है, तो ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए कि जो इंसानी शयातीन होते हैं, ठीक है, तो वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, वो हर काम के वक्त आपके पास आकर के वसवसे नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इस तशरीह के साथ जब इसको देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ये सिर्फ जिन वाले शयातीन ही हो सकते हैं। तो अब वो आकर के कोशिश करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब कितना होते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि बंदा यानी जो 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 मुसलमान है वो किस किस्म का मुसलमान है, ठीक है ना। तो अब वो मुसलमान जो है, अगर अल्लाह की याद से गाफिल मुसलमान है, ठीक है ना, तो जब ये शैतान आकर के वसवसे डालता है तो वो वसवसों में कामयाब हो जाता है, हत्ता कि वो गाफिल मुसलमान जो है वो उसके वसवसों की वजह से अच्छा खासा परेशान भी हो जाता है और अक्सर औकात जो है वो वसवसों के ऊपर अमल भी कर लेता है, वसवसों को अपने दिलो दिमाग में जमा भी लेता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बिल्कुल ही गाफिल किस्म का मुसलमान, यानी कलमा तो उसने पढ़ा हुआ है, ईमान तो उसका है, लेकिन अल्लाह की याद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसा शख्स जो होता है ना, ये तो गोया के शैतान के लिए फुटबॉल होता है, जिस तरह फुटबॉल को लातें मारी जाती है ना, और वो बेचारी अपने आप को बचा ही नहीं सकती, कुछ है ही नहीं उसके पास अपने आप को बचाने के लिए, तो जिसका जी चाह लात मार करके उसको इधर से उधर फेंक दिया, उसको इधर से उधर फेंक दिया। तो गाफिल मुसलमान की ये मिसाल है, ठीक है। और फिर एक मुसलमान होता है कि जो कि कभी जिक्र करता है और कभी गाफिल होता है, फिर जिक्र करता है फिर गाफिल होता है। तो इसका केस क्या होता है कि इसको जो है वो वसवसे डालने की कोशिश करने के लिए पहुंच जाता है, जो क्योंकि उसका तो काम है, ये तो उसकी ड्यूटी है, शैतान का काम ही क्या है, यही तो काम है उसका, वो अपना काम करता है। अब जब ये गाफिल होता है उस वक्त ये वसवसे इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और ये उसको तंग करते रहते हैं ये वसवसे, और जिस वक्त वो जिक्र करता है तो उस जिक्र करने से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड फौरन से बन जाती है, ठीक है ना। क्या वो आजकल क्या कहते हैं उसको, डोम, वो मिसाइल से बचने के लिए जो इसराइल ने वो प्रोटेक्टिव डोम लगाए हुए हैं अपने, ठीक है ना, जो उधर से वो रॉकेट फेंकते हैं बेचारे, उनके पास कुछ कुछ आ रहे हैं ही नहीं, वो रॉकेट फेंकते रहते हैं थोड़े थोड़े दिन के बाद, तो ये जो प्रोटेक्टिव डोम लगा देते हैं ना, तो वो रॉकेट जो है वो अंदर ही नहीं आ सकते, ठीक है। तो उस तरह का एक प्रोटेक्टिव जो है ना वो शील्ड बन जाती है, इसके वसवसे उधर से आ रहे हैं लेकिन शील्ड जो है उनको रोक लेती है, ठीक है। अब जैसे ही ये गाफिल हुआ तो ये शील्ड हट गई और उधर से, हाँ, आयरन डोम, ठीक है, तो वो उधर से जो है वो वसवसे एंटर होना शुरू हो गया इसके अंदर। फिर जैसे ही इसने दोबारा जिक्र शुरू किया, फिर जो है वो शील्ड ऊपर से वो हो गई, डोम बन गया, आयरन डोम, और फिर वो वसवसा खत्म, ठीक है ना। तो इस मुसलमान का ये मामला चलता रहता है, बैन बैन, कभी महफूज है और कभी गैर महफूज है। और फिर तीसरी किस्म वो मोमिन होते हैं कि जिन्होंने खूब मेहनत करके जो है ना वो अल्लाह की याद को अपने ऊपर तारी कर लिया होता है, उनके दिल जो होते हैं ना वो अल्लाह की याद में जारी हो चुके होते हैं और उनके दिल का हुक्म उनके हाथों, पैरों, आंखों, कानों के ऊपर नाफिज हो चुका होता है, दिल का हुक्म आजा और जवारह के ऊपर नाफिज हो चुका होता है। क्या मतलब कि ये इनकी सारी जिंदगी जो होती है ना वो शरीयत के ताबे हो चुकी होती है, ठीक है ना, ये हर काम, हत्ता के इवन इनकी सोचें जो है ना ये भी शरीयत के ताबे हो चुकी होती हैं। अब ये जो लोग होते हैं ना, दे आर कॉन्स्टेंटली इन साइड द आयरन डोम, ठीक है ना, ये मुस्तकिल शील्ड के अंदर है, इनके ऊपर वो वसवसे कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं है कि शैतान वसवसे डालना छोड़ देता है, शैतान जो है वो इनसे मायूस होकर के जो है वो किसी और की तरफ चला जाता है, नहीं, शैतान तो इनके ऊपर भी अटैक करता रहता है, लेकिन ये आयरन डोम जो है इनका जिक्र की हालत वाला, ठीक है ना, ये मुस्तकिल जो है वो इनको बचा के रखता है। यही वो लोग होते हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने उस इबलीस को कहा था, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, मेरे ऐसे जो बंदे होंगे ना, मेरे खास बंदे, इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम, तेरे लिए उनके ऊपर जो है ना कोई सुल्तान, कोई पावर नहीं है तुम्हारे तुम्हारे पास, तुम्हारे तुम्हारा जोर नहीं चलने वाला उनके पास, उनके ऊपर, ठीक है ना। तो भाई कोशिश तो कर सकते हैं कम से कम, या अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह हमें भी ऐसा बना दीजिए, या अल्लाह हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ठीक है ना। तो जब नियत करेंगे, दुआ करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा सा अमल शुरू करेंगे, तो भाई कम से कम 100% गफलत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम तो होगी ना, 99% हो जाएगी, और मेहनत करेंगे 98% गफलत हो जाएगी, 2% जो है वो हुजूरी की कैफियत आ जाएगी, करते 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 50% पर आएगी, फिर और बढ़ती जाएगी। तो क्या पता भाई कि मौत से पहले पहले शायद हमें भी वो 100% वाली हुजूरी की कैफियत नसीब हो जाए, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक जो है वो इंसान की नीयत, इरादे और उसकी मेहनत के साथ होता है। ये कैफियत आज भी इंसान को मिल सकती है। अच्छा, तो अब ये जो दुआएं हैं, इन दुआओं को हमें अपने मशगूल के अंदर, अपने मामूलात के अंदर दाखिल करना चाहिए, याद करना इस तरह की दुआओं को, और मौके की मुनासिबत से इनको पढ़ भी लिया करें, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी बहुत अहम है, ठीक है, वो क्या है कि दुआएं जो होती हैं ना, ये मुकम्मल हल नहीं होती, इन वन वे ये मुकम्मल हल नहीं, ठीक है ना। क्या मतलब कि भाई दुआओं के बाद जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने दुआ मांग ली है, अब कुछ नहीं करूंगा, अब मैं कोई अजबाब इख्तियार नहीं करूंगा, अब मैं कोई जो है वो दवा नहीं करूंगा, बस दुआ मांग ली और अब मैंने अब कुछ और करना है, यानी अब जो है ना वो मैं अपने, यानी क्या कहते हैं, टीवी खोल के बैठ जाऊंगा, अब मैंने उसके बाद क्रिकेट का मैच देखना है, क्योंकि दुआ तो मांग ली ना भाई, अल्लाह से जो है वो मैंने तार जोड़ लिया और अल्लाह ताला से जो है ना वो मैंने दिल से दुआ मांग ली है, अब जो है ना मैं जा करके फिर वो, यानी कुछ शुगल करूंगा अपना, कुछ आई विल गेट बैक टू माय नॉर्मल लाइफ, ठीक है ना, क्योंकि दुआ मांग ली, ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है ना। क्योंकि दुआ के बाद जो है ना, दुआ हैज टू बी फॉलोड बाय दवा, ठीक है ना, ये सुन्नत है, और सुन्नत से एराज करने वाला जो होता है ना, वो तो फिर उसके ऊपर तो फिर बड़ी वही जाएगी भाई, ये जो जिसने वमन आ रहा अनसुन्नती तो नहीं समझ, वो तो मेरे अंदर से, मेरे मेरी उम्मत में है ही नहीं, वो तो मेरे लोगों में से है ही नहीं, ठीक है ना, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया। तो भाई ये जो दुआ के बाद जो दवा है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। तो इस एंगल से अगर हम देखें ना, तो दुआ से काम नहीं बनता जब तक उसको फॉलो अप ना किया जाए दवा से। हाँ, दूसरे एंगल से देखें कि भाई जब अल्लाह से आपने दुआ मांग ली तो उससे सारे काम बन जाएंगे, वो कैसे, वो ऐसे कि अब जब अल्लाह से सिद्क दिल से दुआ मांगनी है ना, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो दवा के रास्ते खोल देते हैं, वो दवा के रास्तों की तरफ हमें गाइड कर देते हैं, हमारे दिल में जो है वो एक इंट्यूशन डाल देते हैं, एक ख्याल डाल देते हैं कि जिसकी वजह से इस मर्ज की या इस मसले में दवा कहां से लेनी चाहिए, हम उस तरफ गाइडेड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये गाइडेंस कैसे मिली, दुआ की वजह से मिली। तो इस तरह से देखा जाए तो हाँ, दुआ से सारा काम बन जाता है, लेकिन दुआ से कैसे सारा काम बन जाता है कि दुआ के बाद फिर दवा की तरफ इंसान गाइडेड हो जाता है, दवा के बगैर काम नहीं होता, हाँ दवा की तरफ गाइडेंस मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब है कि दुआ से सारा काम बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुआ करी और उसके बाद जो अपने मशगूलियात के अंदर लग गए और बस खुद ही हो जाएगा सब कुछ, यानी फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, रब्बिर्जिउन, यानी मौत के वक्त काफिर पर जब आखिरत का अजाब सामने आने लगता है तो वो तमन्ना करता है कि काश मैं फिर दुनिया में लौट जाऊं, ऐ मेरे रब इरजउनी, मुझे लौटा दीजिए। ठीक है, तो उस वक्त तमन्ना करता है कि मैं फिर दुनिया में लौट जाऊं और नेक अमल करके इस अजाब से निजात हासिल करूं। इबन जरीर ने बरवायत इबन जुरैज रहमतुल्लाह अलैह नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मोमिन जब रहमत के फरिश्ते और रहमत के सामान सामने देखने लगता है तो फरिश्ते उससे पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाए, तो वो कहता है कि मैं उस गमों और तकलीफों के आलम में जाकर क्या करूंगा, ठीक है, मुझे तो अब अल्लाह के पास ले जाओ। और काफिर से पूछते हैं तो वो कहता है रब इरजिउन, यानी मुझे दुनिया में लौटा दो। ठीक है ना, एक और, वन मोर चांस, राइट, वन मोर चांस, अब नेक बन जाऊंगा, लेकिन उसको अब चांस नहीं मिलता। तो अब तसव्वुर करें कि हमारी तो हालत खराब हो जाए, भाई वो मौत आ गई, ओहो मौत का फरिश्ता आ गया, है ना, उधर तो जाने के तस्वीर ही कोई नहीं, उधर तो जाने की हम सोच भी नहीं सकते कि भाई मर जाएं और कब्र में चले जाएं, और नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, वो वापस नहीं आना चाहता, उसको ऑप्शन दिया जाता है, यानी पूछा जा रहा है उससे क्या तुम वापस जाना चाह रहे हो, तो कहते नहीं मुझे नहीं जाना इधर वापस, राइट। तो अल्लाह ताला उसके साथ कैसा मेजबानी वाला मामला करते होंगे, कैसी आगे रहमतें नजर आ रही होती होंगी कि इस दुनिया की आसाइशें, अगर यानी यहाँ पर ये कोई थोड़ी हो रहा है कि खाली गरीब और पसमानदा जिंदगी जो गुजार रहा था बस वो मोमिन जो है कहेगा यार आगे चलो उस जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं कब्र में ही चला जाऊं, नहीं, जो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा था ना मोमिन, यानी हलाल वाली अय्याशी, है ना, अल्लाह की नेमतों में डूबा हुआ था इस दुनिया के अंदर, वो मोमिन भी इसमें शामिल है, वो भी नहीं वापस आना चाहेगा। सिर्फ एक चीज होगी जो कि दूसरी हदीसों में पता चलता है, एक चीज होगी उसको इस दुनिया के साथ जो एक एक, एक फिक्र रहेगी, वो क्या, मेरी औलाद का क्या बनेगा, नहीं, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा, क्यों, इसलिए कि मोमिन की ये सिफत है, मोमिन के ये रग रग रेशे रेशे के अंदर ये फिक्र दुनिया की जिंदगी के अंदर भी रहती थी, मेरी औलाद का क्या बनेगा, नेक बनेगी कि नहीं बनेगी, अल्लाह के यहां वो मकबूल होगी कि मर्दूद होगी, उसकी सारी जिंदगी की ये फिक्र होती थी, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, ऑफकोर्स जिनके औलाद ही नहीं है तो उनको तो जाहिर है औलाद की फिक्र नहीं, उनको किसी और चीज थी, ठीक है ना, लेकिन जिनके पास औलाद है वो औलाद की फिक्र से गाफिल नहीं हो सकते, अगर हैं मोमिन नहीं, यानी हम उसको कुफर का कोई फतवा नहीं दे रहे कि नऊज़ुबिल्लाह उनकी उनका निकाह टूट गया और उनको जो है वो दोबारा से कलमा पढ़ने की जरूरत है ईमान की, नहीं हम ये नहीं कह रहे भाई, हम तो सिफत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये किस किस्म का मोमिन है कि जिसको अपने औलाद की ईमान की और आखरत की फिक्र नहीं है, है ना, इसी वजह से जब इस मोमिन को इस दुनिया से ले जाया जा रहा होगा ना, आगे की रहमतों की वजह से वो वापस आना, उसको वापस आने की फिक्र नहीं होगी, वापस आना नहीं चाहेगा, लेकिन औलाद की फिक्र उसको उस वक्त भी होगी, उस वक्त जो है ना वो पूछेगा मेरी औलाद का क्या बनेगा, फरिश्ते उसको इत्मीनान दिला देंगे, अल्लाह ताला की तरफ से उसको मैसेज देंगे तुम फिक्र ना करो, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। जब उसको ये वादा दे दिया जाएगा ना, अब उसकी ये अकलौती फिक्र ये भी खत्म हो जाएगी उसके बाद, क्योंकि रब के वादों के ऊपर उसको पहले भी इत्मीनान था, तो अब एक और वादा आ रहा है, अब क्यों नहीं इत्मीनान करेगा उस वादे के ऊपर, क्यों नहीं एतमाद करेगा, राइट, तो एतमाद करके अब ये भी खत्म, अब तो बस ओनली फॉरवर्ड लुकिंग, कहते ना जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर यू शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, डोंट लुक बैक, डोंट लुक एट योर फेलियर्स, जस्ट लुक फॉरवर्ड, keep charging ahead, right, this is what a moment is, he keeps charging ahead, hai na, ab wo aage ja raha hai, padhta hi chala ja raha hai alam e barzakh ke andar, mashallah, theek hai, to ye sifat hai moment ki, theek hai na, ek to ye ke uski nigah duniya ki zindagi mein bhi aakhirat par hoti hai, to jab aakhirat usko samne nazar aati hai to wo to usko embrace karta hai na, uske liye to wo pehle se taiyari kar raha tha, aur duniya ko दुनिया के अंदर उसको है ना कोई चीज यानी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जो कि आखिरत के ऊपर गालिब आ सके। ठीक है ना, ठीक है, अट्रैक्शन है, अल्लाह की नियमतें होती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ठीक है ना, और वो फिर नियमत भी उसके लिए आखिरत का सामान बन जाती है, ठीक है। लेकिन इस दुनिया को वो बेसिकली एक गमों वाली जगह के नजर से ही देखता है। यहाँ की कोई चीज जो है ना उसको इम्प्रेस नहीं कर सकती, यानी इतना इम्प्रेस नहीं कर सकती कि वो उसकी तवज्जो उधर से भट करके इधर लग जाए। ये मोमिन की शान है ही नहीं, ये मोमिन की शान है ही नहीं, ठीक है। और फिर एक और सिफत मोमिन की कि उसको जो है ना वो अपने आइला अपनी फैमिली का फिक्र रहती है, वो अपने मुसल्ले के साथ और अपने जो है वो वुजू का लोटा और अपना मुसल्ला और बस मी माई सेल्फ एंड आई मी माई सेल्फ एंड माई इबादतें, ऐसा नहीं होता मोमिन, ठीक है ना। क्या है, अद्दीनु नसीहा, भाई ये दीनु नसीहा कौन सा दीन की बात, ये कुछ कुछ और किस्म के मुसलमान अमल करते हैं और बाकी जो मुसलमान हैं वो उनके लिए कोई और दीन है कि जिसके अंदर नसीहा नहीं है। नसीहा का मतलब क्या होता है, खैर ख्वाही, दूसरों के लिए खैर ख्वाही, ठीक है। तो अब ये किस किस्म का मोमिन है कि जिसको दूसरों की कोई फिक्र ही कोई नहीं, ये किस किस्म का मोमिन है, कौन से वाली दीन के ऊपर ये अमल कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ दीन तो ये नहीं है कि इसको यानी बड़ा टोपी दाढ़ी पजामा पांचा और शलवार टोकने से ऊपर और मस्जिद भागे चला जा रहा है, उधर से वापस आए चला जा रहा है और एतिकाफ में चला जा रहा है और उम्रे पे चला जा रहा है और हज पे चला जा रहा है, राइट, मी माई सेल्फ एंड आई, ये कौन से वाला दीन है भाई। तो दीन तो होता है दीन नसीहा, लाजिम और मलजूम है दोनों चीजें एक दूसरे के साथ। तो इसको तो फिक्र, ये तो फिक्रमंद मोमिन होता है, ये बेफिक्रा इंसान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि एक बेफिक्रा इंसान हो और वो भी मोमिन हो, यानी बड़ा नुक्स है तेरे ईमान के अंदर अगर तुझे फिक्र नहीं है दूसरों की, बड़ा नाकिस ईमान है तेरा। और ये जो नाकिस ईमान होगा ना उस बंदे के साथ ऐसे मामला नहीं होंगे कि उधर मलिकुल मौत आए और सामने जो है वो अल्लाह ताला की रहमत के जो है वो खजाने नजर आ रहे हैं और वो माशाल्लाह उसको इस्तकबाल किया जा रहा है, नहीं, ये तो उस मोमिन के साथ होगा जिसने कि अपने दीन के अंदर जो है ना ये सिफात शामिल करके रखी, ठीक है, नॉट एट द लेवल ऑफ परफेक्शन, राइट। हम वैसी नसीहा अपने अंदर नहीं पैदा कर सकते जैसे कि नबी रसूलुल्लाह की नसीहा थी, राइट, जैसे सहाबा कराम का के दिल की कैफियत थी, वैसी तो नहीं पैदा कर सकते अपने अंदर, लेकिन कम से कम अपने माहौल मुआशरे अपने आसपास जैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो रेलिवेंट मार्किंग तो हो सकती है ना भाई, राइट। तुम्हारी क्लास में बाकी लोगों के अगर 100 मार्क्स आ सकते हैं या 80% मार्क्स आ सकते हैं, तुम्हारी अपनी क्लास के अंदर तो तुम्हारे जो है वो 20% मार्क्स क्यों आ रहे हैं भाई, राइट, ये इसको रेलिवेंट मार्किंग कहते हैं ना। ठीक, हमारे यहाँ एक असेंबली लैंग्वेज के टीचर ने एक दफा कहा कि जी ओपन बुक एग्जाम है, हमने कहा अच्छा ये क्या चीज होती है ओपन बुक एग्जाम, पहली दफा हमारे साथ हुआ था ये थर्ड सेमेस्टर में, तो उन्होंने कहा जी आप अपनी किताबें खोलें, मैं आपको टेस्ट पेपर दूंगा, आप किताब में से देख करके सॉल्व करें पर्चे को, ठीक है ना। हमने कहा भाई ये तो मजे हो गए, सबके 100% मार्क्स आएंगे, लेकिन हुआ क्या कि जब मार्क्स आए ना, जब पेपर आया तो सबको पता चल गया कि ये तो कुछ और ही चीज हो रही है, और जब मार्क्स आए तो पूरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स जो थे 24%, 24 मार्क्स जो थे ना ये हाईएस्ट थे, ठीक है, और बाकी जो है वो किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 1 आ रहा है, और अंडा भी बहुत सारे लोगों को मिला था, ठीक है। तो अब जो है ना वो उस्ताद साहब ने क्या किया, टीचर ने, उन्होंने कहा कि जी ये 24 मार्क्स जो है ना इसको मैं कर दूंगा 100, और बाकी जो है ना वो उसके हिसाब से बाकियों को भी मैं उसी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो भाई जब इस क्लास में एक बच्चा 24 ले सकता है तो बाकी जो है वो 1, 2, 3 मार्क्स क्यों ले रहे हैं, है ना, उसने भी तो इसी टीचर से पढ़ा था, उसके सामने भी तो यही बुक थी, ठीक है ना। तो ये रेलेवेंट मार्किंग क्या है कि भाई हमारे दौर के अंदर जब ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अपनी फिक्र भी है और अपने अहले खाना की फिक्र भी है और दूसरे मुसलमानों की फिक्र भी है, तो तुम कौन से वाले दीन पे अमल कर रहे थे, ठीक है। तो मोमिन की ऐसी ऐसी सिफात होती हैं कि उसको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि फिर तुम्हें दुनिया में वापस कर दिया जाए। वो कहता है कि मैं उस गमों और तकलीफों के आलम में जाकर क्या करूंगा, मुझे तो अब अल्लाह के पास ले जाओ। अच्छा, कल्ला, काफिर को जब पूछा गया, काफिर से पूछते हैं तो वो कहता है रब्बिर जियोनी, यानी मुझे दुनिया में लौटा दो, लेकिन जवाब क्या मिलेगा इसको, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुआ कायलुहा, ये तो बस कहने की बात है, जो कि कहता रहता है, ये डोंट पे एनी हीड टू इट, वम्यू वराइहिम बरज़खुन इला यौमे युबअसून, और इसके पीछे जो है ना वो बरज़ख होगी, यानी एक आड़ पैदा कर दी जाएगी दुनिया और इसके दरमियान, आड़ बरज़ख, ठीक है ना, और ये इस आड़ में यौम युबअसून तक, उठाई जाने वाले दिन तक वहीं पर रहेगा। बरज़ख के लफ्जी मानी हाजिज और फासिल के हैं, यानी फासला कर देने वाला, जिसका देख नहीं सका, लेकिन आजिस का मतलब भी वही, यानी रुकावट के मानी में आता है, दो हालतों या दो चीजों के दरमियान जो चीज फासिल हो, फासला करने वाली, फासिल का लफ्जी तर्जुमा यह बनता है, उसको बरजख कहते हैं। इसीलिए मौत के बाद कयामत और हशर तक के जमाने को बरजख कहा जाता है कि ये दुनियावी हयात और आखिरत की हयात के दरमियान हद फासिल है, ठीक है ना, यानी बस जान निकली और इसके बाद से लेकर के मैदान हशर तक सारा जो है ना ये सब कुछ बरज़ख है। तो अब वहां पे जाकर के जो हिसाब किताब वाला आलम होगा वो, और फिर उसके बाद जन्नत और दूसरी तरफ जहन्नुम, ठीक है ना, ये फिर आलम आखिरत है, ठीक है ना, उसको आलम बरज़ख नहीं कहते, उसको आलम आखिरत कहते हैं। तो हम आलमुल अरवाह से, यानी वो हमारा पहला ठिकाना था, फिर आलम दुनिया ये हमारा दूसरा ठिकाना है, फिर आलम बरजख ये तीसरा ठिकाना है, और फिर चौथा ठिकाना क्या है, आलम आखरत, ठीक है ना, वो आलम आखरत जो है फिर हमेशा हमेशा का मामला है। अच्छा, और मानी आयत की ये है कि जब मरने वाला काफिर फरिश्तों से दोबारा दुनिया में भेजने को कहता है तो ये कलमा तो उसको कहना ही था, क्योंकि अब अजाब सामने आ चुका है, अगर इस करने का अब कोई फायदा इसलिए नहीं कि वो अब बरजख में पहुंच चुका है, जिसका कानून ये है कि बरजख से लौट कर कोई दुनिया में नहीं आता, और कयामत और बास व नशर से पहले यानी दूसरी जिंदगी नहीं होती। अब जब इसको जिंदगी मिलेगी ना, ये वही जिंदगी होगी जब दूसरा सूर फूंका जाएगा, और फिर जो है वो सारे के सारे मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर के निकलेंगे, अपने मैदान हशर में जमा होंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास मुकम्मल हो गया, 3 मिनट हैं क्लास के खत्म होने के टाइम में, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, अगर शेयर करनी है तो आप। जी खुवातीन को हम मैसेज भेज देते हैं, लेकिन उनके लिए ये मैंडेटरी क्लास नहीं है, माशाल्लाह सुबह को भी आप क्लास लेती हैं अपनी, जो खुवातीन की उसी क्लास होती है, तो रात को अगर आपके लिए सहूलत है आसानी से आप सुन सकती हैं, हम तो ये भी कोई पाबंदी नहीं लगाते कि कामकाज के साथ ना सुने, बल्कि बाकायदा अदब के साथ बैठे और फुल फोकस होकर सुने, तो अगर आपको कामकाज के साथ सुनने का की सहूलत है तो ऐसे भी आप सुन सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए तो मस्ट क्लास नहीं है, मैंडेटरी क्लास नहीं है। मैंडेटरी तो खैर मर्दों के लिए भी नहीं है, या मर्दों में भी इसके लिए आसानी होती है, वही आकर के सुनता है, यहाँ पर कोई इम्तिहान वगैरह का क्विज वगैरह का, ठीक है, चलें, लगता है कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास, तो फिर सीन खत्म कर देते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। सेंड यू द दुआ, पारफुल कुरान के अंदर पेज नंबर 330 के ऊपर ये दुआ लिखी हुई है, चलें हम इसकी तस्वीर खींच के भेज देंगे।